आवृत्ति करेंगे 21वें अध्याय की पहले श्लोक से चालू करेंगे। श्री सुखम वाचा सत्यम समीक्षा जभव नखेन्दु भी हता स्वधाम दुति के सत्कृत व्ययात हता स्वधाम दुतिरावृत व्ययात मरीचि मिश्रा विषयो महाव्रत सुमन जनाद्या नरदेव जोषित योगिन वेदोपवेदा नियमान्विता जमा तर्के इतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्निनारंभित कर्म कर्मशः भवन निरेजस्मरणानुभावत स्वयं भूम धाम गता अकर्मकम् अथान भये प्रोन्नमिताय विष्णु उपाहरत पद्म भौरहणोदकम् आराम से उच्चारण के लिए और गायत मत छोड़िए, एक पाठक के बाद दूसरा तुरंत चालू करें। श्री शुक्र उराचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सत्यम सत्य लोक में समीक्षा देखकर अब जो हवा कमल से उत्पन्न श्री ब्रह्मा जी नखेन्दु भी भगवान त्रिविक्रम के नखचंद्र द्वारा हता स्वधाम द्युति जिनके धाम की चमक रुकी पड़ गई थी अभी तो अनेक योगियों के द्वारा घिरे हुए अभ्ययात ब्रह्मा जी आए मरीचि मिश्रा जिनमें मरीचि मनी मुक्त थे विषय ऋषि जन बृहद व्रता ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सुनंद नाद्या सुनंदन सनातन सुमत कुमार आदि नवदेवा हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित योगिनः और योगी जन भगवान के भक्त वेदा चारों वेद चार वेद के क्या नाम हैं बीज यजु शाम और अथर्व चार वेद हैं और चार ही उपवेद हैं, जैसे धनुर्वेद आयुर्वेद ये वेदों के सुप्लीमेंटरी ग्रंथ हैं, उसको पूरा किया जाता है वेद के सारे भागों को। तो ब्रह्मा जी के लोक में वेद उपवेद तर्क इतिहास पुराण आदि सभी देवता के रूप में मूर्तिमान रहते हैं। सभी वेद और उपवेद तर्क इतिहास पुराण आदि सभी देवता के रूप में रहते हैं प्रकट। तो सभी ब्रह्मा जी के साथ जुटे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके ध्यान की जो चमक है वो भगवान के नख की ज्योति से फीका हो गई है। यदि एक तुच्छ प्रकाश के सामने बहुत बड़ा प्रकाश आ जाए तो छोटा प्रकाश जैसे फीका हो जाता है। ब्रह्मा जी के ध्यान में बहुत चमक है, लेकिन भगवान के नख चंद्रों के प्रकाश से वो फीका हो रहा है। हतक सौधाम द्वीति ब्रह्मा जी के धाम की जो द्वीति थी जोत्ना थी वो फीकी पड़ गई और ब्रह्मा जी आए भगवान के चरण को देखकर। द्वितीय चरण एक चरण से भगवान ने नापा है नीचे के लोगों को, अतल सुतल वितल पलातल महातल दसातल पताल आदि सबको नाप दिया। एक पैर से तीसरा पैर बढ़ा भगवान ने तो स्वर्ग लोक का नाप लिया, स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, इसके बाद सत्य। ब्रह्मा जी का लोक बलि महाराज के अधीन नहीं था, लेकिन भगवान का चरण पहुंच गया है नापने के लिए। वो ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है, बहुत दूर, तो उस ऊंचाई पर भगवान का चरण पहुंच गया है। और भगवान के चरणों में जो नख थे वे चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे पांच चंद्रमा उग गए हो एक साथ, बहुत प्रकाश निकल रहा है। भगवान विराट रूप धारण किए थे नापने के लिए, तो उसी हिसाब से उनका शरीर भी बड़ा हुआ और पैर इतना बढ़ा कि सतलोक तक चला गया। सतलोक के बाद कारण समुद्र बहता है, कारणाव समुद्र इस ब्रह्मांड की सीमा के बाहर, कारण समुद्र में ही सारे ब्रह्मांड तैरते। तो एक ब्रह्मांड की कितनी लंबाई है, अगर ब्रह्मांड के बीच में एक रेखा खींची जाए बीच में जिसको व्यास कहते हैं, तो एक ब्रह्मांड की लंबाई बीच से 50 करोड़ योजन है, 65 कोटि योजन, एक योजन 8 मील का होता है 4 कोस का। इस हिसाब से एक ब्रह्मांड की परिधि दूसरे परिधि तक जाती है, तो इतना चौड़ा लोक है ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर भगवान का चरण पहुंच गया है। तो सत्यम समीक्षा सत्य लोक में भगवान के चरण कमल को देखकर अब्ज भवः श्री ब्रह्मा जी, जो अब्ज से कमल से जन्म लिए हैं। अब का अर्थ है जल और ज का अर्थ जन्म, कमल का जन्म जल से होता है और कमल से जन्म लिए हैं श्री ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उसी कमल पर श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। तो उन्होंने देखा कि भगवान का चरण आया हुआ है, तो चरणों की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ और सभी वेद पुराण इतिहास के साथ देवता जहां रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में सभी देवता नहीं जा सकते, बहुत शुद्ध है जो हैं, सभी बृहद व्रती ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अखंड ऊर्ध हो देता है। ऐसे जो भी नियुक्त रहते हैं ब्रह्मा जी अकेले नहीं है, भरा हुआ है तो सभी परम उच्च कोटि के ऋषि मुनि वेद पुराण से रहते हैं, तो सभी से आवृत होकर के सबसे घिरे में ब्रह्मा जी आए चरण का स्वागत करने के लिए। भगवान के चरणों को उन्होंने देखा कि ये आया हुआ है, तो भगवान के चरणों में सभी लोग प्रणाम किए, भगवान गिरे। सभी वंदना किए, जब स्मरण भाव था इसी चरण के स्मरण के प्रभाव से ये सभी लोग ब्रह्मा जी के धाम में गए। ब्रह्मा जी के धाम में जो भी जाया गया जाता है केवल भगवान के चरणों का स्मरण करने से, चरणों में प्रणाम करने से, और जिस चरण के प्रभाव से वे ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त किए थे उसी चरण को ब्रह्मा जी के लोक में आया हुआ देखकर सभी वंदना के लिए उपस्थित हुए। और पद्म भुवः अथांग रये पुरुमनिता यदि स्मत, भगवान के उठे हुए चरण को देखकर ब्रह्मा जी उस चरण में अनेक प्रकार से पूजा की। उपाहर पद्म भो अहन बहुत प्रकार से श्री ब्रह्मा जी पूजा किए चरणों की, और अंत में भगवान के चरणों को धोए। वो ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड में अवभर है, अस्तर है, तो ब्रह्मांड के अवभर को छेद दिया भगवान के नखों में, ब्रह्मांड फट गया, तो इससे स्पिरिचुअल जल गिरने लगा, कारण समुद्र का भगवान के चरणों को धोने लगा। धो करके गिर रहा था तो श्री ब्रह्मा जी उस चरणों को, चरण धुआं को कमंडल में रख, यही जल इस पृथ्वी पर आया। राजा भगीरथ की कृपा से, तपस्या से वही गंगा जी आए जो सारे जगत को पवित्र करती है। भगवान के चरणों को धो करके वो जल है। ब्रह्मा जी पहले भी कमंडल में जल लिए थे, उन्होंने चरण धोया और ब्रह्मांड का कौवर फटने से कारण समुद्र का जल चूने लगा, तो भगवान के चरणों को धो रहा था, तो श्री ब्रह्मा जी चरण धोन को रखे अपने कमंडल में। यह चरण धोन इतना पवित्र है कि तीनों जगत के जीवों को पवित्र कर रहा। एक तो स्पिरिचुअल जल आया और दूसरे भगवान के चरणों को धो करके गिरा, इसीलिए और अधिक पावन है। तीनों लोकों को गंगा जी पवित्र करती है, ऊपर के लोक में स्वर्ग में ब्रह्मा जी के लोक से गिरते हैं, स्वर्ग में आते हैं और उसके बाद उस पृथ्वी पर आते हैं। और उसके नीचे भी जाती हैं जिनको भगवती कहते हैं, शीतल अतल तलातल सभी लोगों में जाती है और ऊपर के सभी लोगों में गिरती है। गंगा जी परम पवित्र है, गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता है। यद्यपि गंगा जी के भीतर बहुत से नाले गिरते हैं, मल मूत्र बहते हैं, लेकिन गंगा जी कभी भी अपवित्र नहीं माने जाते, विद्वानों द्वारा वो परम पवित्र है। सुभारु अशु सलिल सब बढ़ाई सुरसरी कौ अपवित न कहाई। शुभ और अशुभ जल गंगा जी में गिरते हैं, लेकिन गंगा जी का मूल भगवान का चरण है, इतना पवित्र है गंगा जी के कोई भी अशुभ भी उनको अपवित्र नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है, हमने बनारस में देखा है, बहते हुए आदमी के शव को लोग हटा करके यहां तक कि और मरे हुए पशु को हटा करके, मल को हटा करके, गाज को हटा करके लोग गंगा जी के पानी को सिर पर रखते हैं, नहाते हैं। देवता भी गंगा जी के जल को सिर पर रखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रक पर कहीं कहीं लिखा हुआ, विशेष करके महाराष्ट्र में मेरा भारत महान, तो भारत महान है ही, इसकी महानता का कारण है इस देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म लिए, लोग बड़े बड़े भक्त जन्म लिए। मनु महाराज ने कहा है एतब देश प्रसूतस्य ये तब देश पशु तस्या आगे जन्म न, इस देश में जो जन्म लिए हैं और श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का जन्म तो लिए हैं, जो मनुष्य में भी जो ब्राह्मण हैं बहुत संस्कारी जीव हैं, इनसे सारे जगत को सीखना चाहिए धर्म की शिक्षा। एतद् देश पशु तस्य सकाशात् अद्य जन्मनः स्वं स्वं धर्मम् अनुशिक्षेय मनुष्यात् पृथिव्यां सर्वमानवः। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सबको अपने धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, वर्ण धर्म आश्रम धर्म भक्ति धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। किससे? जो इस देश में जन्म लिए, इस देश में जन्म मिलना बड़ा कठिन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि से हैला मनुष्य जन्म जाए, जन्म सार्थक कर करी करो। इस भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उनको चाहिए कि अपने जन्म को सार्थक करें, भगवान की भक्ति अवश्य करें और इसके साथ दूसरे का उपकार करें, प्रचार करें। मनु महाराज की युक्ति युक्ति बिल्कुल सत्य है। इसी देश में श्री प्रभुपाद जन्म लिए और उन्होंने सारी पृथ्वी पर भगवद्गीता के द्वारा प्रचार किया। बहुत उन्नत जीवन था प्रभुपाद जी का, उनके पिताजी परम वैष्णव थे, उनमें दिल संस्कार था भक्ति का। गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित थे तो श्रील प्रभुपाद जी का पैतृक जो बैकग्राउंड था बहुत उन्नत था, इसीलिए प्रभुपाद जी को बचपन में ही भक्ति का संस्कार मिला। गौर मोहन देव यही चाहते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, और भगवान की कृपा से गुरु भी ऐसे मिले जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त, गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो पिता उन्नत थे और गुरु भी बहुत उन्नत थे, इसलिए प्रभुपाद जी बचपन में ही करम वर्षों हुए भक्ति के संस्कार में थे, भगवान की पूजा करते थे बचपन में। यहाँ तक कि पिताजी ने एक छोटा सा रथ बना करके दिया था, छोटा रथ, वो बच्चों के साथ रथ यात्रा निकालते प्रसाद बांटते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जो बच्चा कलकत्ता की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में रथ यात्रा निकालता था, वो एक दिन ऐसा समय आया जो संसार के बड़े से बड़े नगरों में रथ यात्रा था। गुरु हरमणि महाराज की युक्ति चलता थी, एतद् देश पशु तस्य सकाशत अग्रजन्म स्वं स्वं धर्मं शिक्षे रहूं पृथिव्याम सर्ग मानना। सभी मनुष्यों को इस भारत में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ संस्कारी पुरुषों से धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से सारे जगत में शिक्षा लिया, सब जगह में गए और अभी भी उनके शिष्य गण सर्वत्र भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जैसे भारत श्रेष्ठ है, वह क्यों है? भगवान से संबंध होने का है। यहाँ अनेक भगवान के अवतार हुए, अनेक ऋषि मुनि भक्त जन्म लिए, इसीलिए पवित्र हुए। इसी तरह से गंगा जी परम पावन है, क्योंकि उनका संबंध भगवान के चरण से है, भगवान के चरणों से जन्म लिए है। श्री गंगा जी ने चरण धोया, ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के बड़े पुत्रों में एक मरीचि भी है, मरीचि मिश्रा, मरीचि मिश्र, मिश्रा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम लोग भारतवर्ष में एक टाइटल देखते हैं ब्राह्मणों में, मिश्रा, तो मिश्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति करता है। तो मरीचि जिनमें श्रेष्ठ थे, ये सब ऋषि मुनि जुटे, भगवान की चरणों की वंदना की, बबन दिए, जब स्मरणानुभाव कर, जिस चरण के स्मरण से, स्मरण के प्रभाव से वे लोग ब्रह्मा जी का धाम प्राप्त किए। और ध्यान कैसा है? अकर्म का। कभी भी कर्म वासना में लिप्त व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, जिससे सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, वही जाता है ब्रह्म जी के लिए। भगवान की भक्ति करने पर ही कर्माणि निर्जहति किंतु भक्ति भारी, भक्ति करने वाले का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के धाम में जो भी गए हैं, ये परम भगवत पुरुष हैं, भक्ति करते हैं, और जोगी ना जोगी हैं, जोगियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जोगी का अर्थ समझना चाहिए उसमें भक्ति लगा हुआ है, भक्ति जोगी। यही सब गए थे भगवान के चरणों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। तो श्री ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा की विविध प्रकार से, चरणों को धोए, पद्म भोग पद्म भवत आप ब्रह्मा जी जो कर्म से हुए हैं, पद्म से जिनका जन्म हुआ और हम लोग बताए भगवान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा के लिए जल इकट्ठा किए कमंडल में, तो जल कारण समुद्र का जल था, समर्थ भगवान के चरणों की पूजा करने के बाद वे भगवान के चरणों की स्तुति करने आए। ब्रह्मा जी बड़े निश्चित व्यक्ति हैं, सीधे सेवा उनका जस परम पवित्र है, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के गुणों को गाने वाले चरणों की स्तुति करने वाले गो वृंदम आदि पुरुषम तमहम ज्ञान इत्यादि जो भी वे जानते थे स्तुति करने वाले समर्थ भक्त्या भक्त्या भेदना सचिव वर्त शिक्षा जन्ना भी पंखे और संभव जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जिस भगवान से जन्म लिए हैं उनकी स्तुति करने लगे। धातु कमंडली जलम तद्भु कमस्य ब्रह्मा जी के कमंडल में जल इकट्ठा हुआ भगवान के चरण भगवान से पादा मेजन पवित्र पड़ा भगवान जी पाद और मेजन जो चरण धोया गया उस चरण का भगवान ब्रह्मा जी रखे अपने इकट्ठा था परम पावन जल वही जल तीनों लोगों में दिखता है, तीनों लोगों के जीवों को पवित्र करता है। ऐसा लगता है कि भगवान की विशेष कीर्ति है, गंगा जी क्या है, गंगा जी भगवान की कीर्ति है, विशुदा कीर्ति। ये तीनों लोगों में बहती हैं, सब जगह जीवों को अवसर देती हैं नहाने का पीने का, और जो दूर देश में है वे ही पवित्र होते हैं केवल गंगा गंगा कहने से, नहाते समय या कभी जय गंगे अगर कोई करे तो पवित्र होते हैं, भले नल को नहीं रहे कुआ पर नहा रहा, लेकिन गंगा जी का जरूर स्नान करना चाहिए। तो कभी भी तब व्यक्ति पवित्र है, केवल जल से दुर्देश के जल से स्नान करने से वो पवित्रता नहीं आएगी, जो पवित्रता गंगा जी का स्नान करने से, गंगा उच्चारण करने से, सब बोलने से आएगी। मैं शास्त्र की बात करता हूँ, जो भी व्यक्ति दूर से गंगा गंगा है कहता है तो ये कहते हैं उसके पाप भस्म हो गए, क्योंकि गंगा जी का इस प्रकार से स्मरण कोई करेगा तो उसको ये बात जरूर याद आएगी भगवान के चरणों से स्नान करेगा, तो भगवान के चरणों का स्नान आएगा गंगा जी का आएगा तो पाप निश्चित नष्ट होगा। स्वयं ब्रह्मा जी जिस नाभि कमल से जन्म लिए हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को रखा, चरण धाम को रखा, और जब राजा सुधर के पुत्र मर गए, भस्म हो गए, तो भगवान कपिल देव ने बताया कि केवल गंगा जल से पर सकते मुक्त हो सकते, इसीलिए तुम गंगा जी को लाने का प्रयास करो। उस समय समंदर से राजा थे, उन्होंने बहुत भारी तप किया, लेकिन गंगा जी को प्रसन्न नहीं करते। अंत में श्री भगीरथ जी तपस्या की, वे गंगा जी के लिए तपस्या की, तो गंगा जी प्रकट हुए उनके सामने आकाश में। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन दो शर्त है। एक तो शर्त है कि हमारा वीर, हमारा फोर्स जब मैं ऊपर से गिरूंगी तो मेरे फोर्स को कोई ध्यान करने में होना चाहिए, और दूसरा एक शर्त रखा कि हम पवित्र रहेंगे, हमें दुनिया भर के लोग आएंगे, एक से एक पापी सब हमने स्नान करेंगे तो मैं गंदा हो जाऊंगा, उनका पाप धोना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो भगीरथ जी ने कहा, तपस्या किया भगवान शंकर की, प्रसन्न हो गया है, भगवान के चरण धोवन को गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार है, तो ठीक है मैं रोकूंगा, जब गंगा जी गिरेंगे तो मैं रोकूंगा। एक समस्या तो हल हो गई, और दूसरी समस्या की गंगा जी अपवित्र न हो, गंगा जी डर रही थी कि हमने सब पापी आ करके स्नान करेंगे तो मैं अपना पाप कहाँ धोऊंगी, मैं गंदा हो जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माता जी, सब तरह से भक्त लोग भगवान कृष्ण के भक्त आपने स्नान करेंगे, तो वैष्णवों के स्नान करने से आपका पाप धुल जाएगा। गंगा जी प्रेरण हो बहुत प्रसन्नता के साथ वे आकाश से गिरे, पहले स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग से धारा ब्रह्मलोक से धारा तीन हो गई, स्वर्ग में उनका नाम है मंदाकिनी, और इस पृथ्वी पर उनका नाम है गंगा जी, और पाताल में भगवती नाम है, तीन धारा है, तीनों लोगों को अतरित करते हैं। बहुत महिमा है गंगा जी, इसी तरह से मुझे याद आ रहा है कि भारतवर्ष के भी महिमा है, भगवान के अवतार के कारण शुरू से ही भगवान का अवतार होने होता है। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा कि भगवान भारतवर्ष में क्यों आते हैं, दुनिया तो बहुत दुर्भुक था, मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो भारतवर्ष में क्यों आते हैं। मैं समझाया, मैं कहा कि भारतवर्ष में इसलिए जन्म लेते हैं कि यहां उनको माता पिता मिल जाते हैं, भगवान से प्रेम प्रेम करने वाले लोग हैं, भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते हैं स्नेह से, जैसे हम अन्य बच्चों को प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं गोद में, ऐसे भक्तों की इच्छा होती है कि हम कृष्ण को अपना पुत्र बना लें, उनको खिला रहे। तो भारतवर्ष में ही ऐसे भक्त मिलते हैं जो भगवान को अपना पुत्र बनाने वात्सल्य भाव से भजन करते हैं, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं, सब लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, भगवान बड़ा व्यक्ति है, वो रहीम है, रहम करता है, बहुत कृपालु है। ये तो ठीक है, भगवान का गुण है, लेकिन भगवान हमारा पुत्र भी बने, हम उनको प्रेम करें हृदय से, ये भाव केवल इस भूमि में है, भारतवर्ष में शुरू से ही महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, तो प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध, अग्निध के बाद उनके पुत्र हुए नाभी, नाभी बहुत बड़े राजा थे। नाभी के मन में यह इच्छा थी कि भगवान विष्णु को मैं अपना पुत्र बनाऊं, ये हमारे घर जन्म में। तो इसके लिए नाभी महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत शुद्ध ब्राह्मणों से, वे इतने प्रभावशाली ब्राह्मण थे कि उन्होंने यज्ञ में मंत्रों से भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान से डायरेक्ट बात नहीं कर पाए नाभी महाराज, वे संकोच कर रहे थे कि मैं विश्व के ईश्वर श्री भगवान को अपना पुत्र बनने के लिए कैसे कहूंगा, लज्जा आ रही। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए यज्ञ में तो ब्राह्मणों ने कहा, जो प्रकार से स्तुति करते हैं, उसने कहा कि हे प्रभु, ये राजा सुनते हैं आपके समान कोई पुत्र लेगा, उनको पुत्र की इच्छा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके समान कोई पुत्र न हो जाए। तो भगवान इतने रिझ गए, उन्होंने कह दिया दूसरा कहां से खोजूंगा, मैं ही पुत्र बनूंगा, श्री भगवान स्वयं ही पुत्र बन गए, उनका नाम हुआ ऋषभ। ये मनुष्य श्रेष्ठ थे, महान थे, बहुत सुंदर था, ज्ञान था, और राजा के सब गुण थे, तो वे स्वयं ही पुत्र बन गए, उनका नाम हुआ ऋषभ देव। राजा मां भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करते, और जब ये बाधक में आए, जब बच्चा युवक हो गया, तब अपनी इच्छा से ही राज्य दे करके बच्चे को वो चले गए बद्रिकाश्रम अपनी पत्नी के साथ, वानप्रस्थ ले लिए और भगवान की भक्ति में रहने लगे। अंत में उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया, वैकुंठ धाम, और राजा बने ऋषभ। ऋषभ देव इतने अच्छे शासक थे, उनकी शासन पद्धति को देखकर इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ईर्ष्या करके इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो भगवान ऋषभ देव अपने योग बल से स्वयं वर्षा की, बहुत बढ़िया वर्षा हुई, और उनके पुत्र साव हुए। इंद्र बड़ी लज्जा में पड़ गए, अंत में भगवान का विवाह किया अपनी पुत्री से, जिसका नाम जयंती था। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र हुए भगवान के साथ देव के, उसमें 9 भारत खंड के राजा हुए। भारत खंड मतलब भारत के राज्यों के राजा, 21 मिनिस्टर जैसा, बहुत बड़े बड़े राजा है, और 9 पुत्र बिल्कुल विरक्त हो गए हैं, ब्रह्मचारी हो गए, केवल भगवान की भक्ति करते थे, प्रचार करते थे। और ज्येष्ठ पुत्र थे भरत। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया, भारत देश। और एकासी पुत्र ब्राह्मण बन गए तपस्या के बल से, विद्या के बल से। वे इतनी सुंदर पढ़ाई की और तपस्या करते थे, इंद्रिय संयम रखते थे। तपस्या के बल से और विद्या के बल से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय थे लेकिन एकासी जैसा ब्राह्मण हो गए। ये प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति उचित गुण अर्जन करके ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के ही कुल में जन्म लिया कोई जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। यह उदाहरण है भागवत के पंचम स्कंध में। तो मैंने कह रहा था कि भगवान को अपना बेटा मानने वाले लोग इसी देश में होते हैं, इसीलिए भगवान यहीं पर जन्म लेते हैं। अगर माता पिता मिले नहीं है तो जन्म कहां से मिले। केवल यह कहकर कि हे भगवान हमको हमारा डेली भोजन दिया करो, चर्च में जाओ मंदिर में जाओ और केवल यही मांग लो कि हमको भोजन दिया करो। भोजन तो दे ही रहे हैं लेकिन हमको हमारा डेली भोजन दिया करो, ये कहा जाए। तो ये भगवान की वास्तविक पूजा नहीं है। अच्छा है भगवान के मंदिर में जाना लेकिन भगवान से इस तरह से मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं बल्कि देना चाहिए। कोई कुछ भी भगवान को ले जाए, फल फूल और सुगंधित अगरबत्ती, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भगवान से प्रेम करे तो भगवान क्यों नहीं प्रेम करेंगे। हम लोग तो उनको कृपालु कहते हैं, दयालु कहते हैं, हे ईश्वर हमारा दुख भर लो, हमें विद्या दो, हमें ज्ञान दो, यही कहते केवल मांग रहे हैं। सभी लोग इस संसार में मांगते हैं, भगवान उसका बेटा कैसे बनेंगे। जो कुछ देने की इच्छा रखेगा, प्रेम करेगा भगवान से, भगवान को अपने से छोटा मानेगा, पुत्र मानेगा, तब भगवान पुत्र बनेंगे। जैसे माँ यशोदा का पुत्र बना, अपनी माता से जन्म लेकर के यशोदा के पास आया, कितना प्रेम है। जन्म मथुरा में लिए और अपनी ही इच्छा से अपने पिता को कह करके कि हमको ले चलिए गोकुल पहुंचाएंगे, और गोकुल आ गए। गोकुल में भगवान बिल्कुल सुख से थे, जो इच्छा होती थी वही खाते थे। इच्छा होती थी गोपियों को कि भगवान कृष्ण हमारे घर में आकर के खाता, तो सबकी रुचि रखने के लिए वो जाने लगे घर घर में, और यहां तक कि चोरी करके माखन खाने लगे। कहीं दूध पी जाते थे, कहीं दही खाते थे, उन्हीं के लिए सब था, इसीलिए वो उसको लेते थे। तो अपनी ही वस्तु को चाहे कोई चोरी से ले या चाहे दान देकर ले, ये कोई दोष नहीं है। भगवान प्रेम की भावना को पुष्ट करने के लिए घरों में चोरी करते अनेक उपाय से, कभी सखाओं के कंधे से चढ़ करके मटका उतारते थे, और बिल्कुल ताजा माखन आते थे, कभी घी पी जाते थे, कभी दूध नया दूध बिल्कुल औंटा हुआ, गोपियां ऐसे रख देती थी मातृभाव वाली गोपियां, और भगवान उसको जा करके पी जाते थे। दही सजाव दही उसको खा जाते थे। अरे कार्य भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, उनके और भी बहुत से नाम हैं, विश्वम्भर श्रीपति केशव गोविंद गोपाल बहुत नाम है, लेकिन भगवान को ये नाम बहुत प्रिय है माखन चोर। कभी कभी वो रंग हो जाते थे, बलराम जी के सामने जब बहस करते थे गाय चराते थे तो बलराम जी कह देते थे ना आप तुम्हारी सब महिमा में जानता हूं चोर कहीं, तुम्हारा नाम ब्रज में सर्वत्र विख्यात है। और दामोदर कहकर के अपमान करते थे, जिसकी मां जिसके कमर में रस्सी बांधी है जो उखल में बांधेगा एक तुम बनते हो मैं सब जानता हूं क्यों उखल में बांधे तुम्हारे कमर में उदर में रस्सी बांधी मां दुष्मा क्यों किस लिए तुम्हारे गुण से तुम चोरी चोरी करते थे मटका छोड़ दिए थे दही का मटका छोड़ दिए थे इसीलिए ना। तो कभी कभी अपमान में भगवान जी कहते थे दामोदर ना वो तो मैं जानता है तुम तो दामोदर। भगवान फिर रूस करके कहते थे तब ठीक है तुम गाय चराने जाओ मैं नहीं जाऊंगा। भगवान जी कह देते थे हाँ तुम जाओ कहीं चोरी करने जाओ चोर कहीं। ऐसे कोई सखा कभी कभी बोल देते थे माखन चोर, तो कृष्ण उस दिन भर कुछ नहीं रहते थे रंज रहते थे, आकर जो सदा से कहते थे सब हमारे पीछे पड़े यहां तक कि हमारा भाई भगवान भी उनसे मिला हुआ है। तो श्री यशोदा बलराम जी को डांटती थी तुम इस विश्वास से बोलते हो, तो बलराम जी कहते थे मैया ने कहा मजाक करता तो डांटती थी ऐसे मजाक मत किया तुम दिन भर खाया नहीं उदास है। श्री बलराम जी ने कहा मैं इसलिए कहता हूं कि ये सज्जन हो जाए तब इसका विवाह हुआ भी होगा, नहीं तो इसको चोर समझेंगे तो और इसकी हरकत जानेंगे तो विवाह कैसे होगा। तब मां यशोदा समझाती है तुम सज्जन बनो ठीक से रहो तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है परेशानी हो रही है कहीं पता लग जाएगा सबको तुम इस तरह से बदमाश हो चोर हो तो विवाह कट जाएगा। तब भगवान कान पकड़ते थे कि आज से मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो तो आदत है भगवान तो माखन चोरी करता ही था। तो इस तरह भगवान से प्रेम करने वाले लोग जा रहे हैं वहीं वहीं भगवान पुत्र बनाएगा। नंद महाराज पुत्र बनाना चाहते थे भगवान, देवकी वसुदेव तपस्या किए थे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए। राजा दशरथ भी ऐसे ही तप किए माता कौशल्या के साथ, तो भगवान श्री कौशल्या जी के पुत्र बने। लेकिन भगवान कृष्ण में और राम में स्वभाव के दृष्टि से बहुत अंतर है। भगवान राम बहुत सीधे साधे, बहुत सुशील थे। भगवान कृष्ण तो नटखट शिरोमणि थे, कभी ठीक से चलते नहीं थे, ठीक से बोलते नहीं थे, टेढ़ी भाषा, कहीं भी किसी को कुछ कह देना। ब्रज की गोपियों से हमेशा कहते थे, मैं ज्योतिषी से बात किया हूं, उसने कहा है कि इसी घर में तुम्हारा विवाह है, ऐसे झूठ बोलते थे। लेकिन भगवान जो भी बोले वही परम सत्य है। इस तरह से श्री भगवान पुत्र बने, तो मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि भगवान के लिए वात्सल्य भक्ति जरूरी है, तब पुत्र बने। तो ऐसी भक्ति वाले दूसरे देश में नहीं होते हैं, केवल भारतवर्ष में ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। इसीलिए भगवान भारतवर्ष में ही अवतार होते हैं। अभी आपने सुना कि माता अदिति ने प्रव्रत किया, भगवान पुत्र बन गए वामन का। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण जल को रखा धो करके अपने कमंडल में, वही कमंडल का जल गंगा जी तीनों लोगों को परिचय करती है। तीन धाराओं में बहती है। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक धारा गंगा के रूप में है। कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है गंगा जी के दर्शन का, स्नान का। ब्रह्मा देव लोकनाथ था, सोमनाथ था, सुना था। ब्रह्मा जिनमें प्रधान है ऐसे लोग पाल हैं, लोगों का पालन करना है, इंद्र आदि देवता है। भगवान के चरणों की पूजा के लिए बहुत सी वस्तुएं इकट्ठा की, जैसे तोलाई, सर्गी, माला, जब भगवान विराट रूप संवरण कर लिए, संचित आत्मविभूत अपने स्वर्ग को छिपा दिए और अपने ओरिजिनल रूप में हुए वामन रूप में, तब ब्रह्मा आदि लोकपाल है, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण आदि देवता और ब्रह्मा जी आए हैं। बड़ी महिलाओं को जय देना, जहां भगवान वामन गए थे। भगवान कभी भी कोई रूप बना सकता है, जब मंगल नाचना हुआ तो इतना बड़ा रूप बनाया, अब पुनः अपने असली रूप में आ गए वामन नाचना। अर्जुन ने भी देखा था भगवान का विश्व, अर्जुन को विश्व रूप भगवान ने दिखाया तो वे डर गए, उनको बड़ी घबराहट हुई, ये कौन है, ये आदमी को कच कच खा रहा है। और देखे कि महाभारत युद्ध में जो लोग जीते हैं विपक्ष के वीर या अपने पक्ष के वीर सबको कृष्ण खा रहे हैं, उनके दांतों के नीचे रोटी के टुकड़े की तरह उनकी लाश पड़ी, इतना भयावह रूप देखा अर्जुन ने, फच फच खून खून गिर रहा था और भगवान चला रहे सिंह जैसा, जैसे भगवान ने सिंह जब खा रहे थे अश्विन को, वो उन्हें कछु की आंख निकाल दिए और इसके बाद असुर लोग जब उनका टूटे आए उनका मारने के लिए, तो असुरों को पकड़ पकड़ करके खाने लगे, खून पीने लगे, बड़े भयावह लगते। इसी प्रकार से भगवान विराट रूप में सभी योद्धाओं को मार रहे थे, उनके मुख से आग निकल रही थी, अर्जुन देख करके भगवान पूछने में घबरा करके पूछते हैं, आख्या इनमें को भगवान विरोधित है, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं, मुझको बताइए, मैं तो अपने मित्र से बात कर रहा था लेकिन आप कौन हैं। वो कृष्ण ही थे लेकिन कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस रूप में नहीं थे, भगवान मूल रूप में कृष्ण है, कृष्ण थे भगवान स्वयं। ऐसे ही श्री वामन जो पहले विराट रूप दिखाए विश्व नापने के लिए और इसके बाद अपने परम शांत दानों के साथ हो गए, भगवान कभी भी कोई रूप धारण कर सकते हैं जैसे भक्तों की इच्छा होती है इसके अनुसार। इसके पहले विराट रूप था पूरे ब्रह्मांड को घिरे हुए और अब बलि महाराज के स्वर्ण आसन पर बैठ गए छोटा बनकर। तो जब छोटा बनकर के बैठ गया तब देवता लोग सब जुटे, ब्रह्मा जी महाराज आकर के भगवान की पूजा कर रहे। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ऐसे क्यों बने, इसका उत्तर है कि भगवान यदि विश्व रूप में रह गए होते तो वहां उनकी पूजा कौन करते, इतने बड़े भगवान की पूजा करना असंभव, इसीलिए छोटे वन में उनकी पूजा की जा सके। देवता सभी मिल करके पुष्प जुटाए, सुगंधित वस्तुएं जुटाए, जल जुटाए, भगवान की पूजा सेवा करने के लिए, उनका चरण धोने के लिए। ब्रह्मा देव लोकनाथ है, स्वनाथ है, ब्रह्मा आदि लोकनाथ में समस्त लोगों के रक्षक हैं, लेकिन इनके रक्षक हैं भगवान कृष्ण। स्वनाथ है स्नाथ, अपने नाथ अपने स्वामी की सेवा कर लिए, सालिका परिणाम है अपने अनुगामियों के साथ भगवान को बलि दिए, बलि मतलब पूजा के सामग्री, पूजा के सामग्री लाए, ये पूजा करने में समर्थ है क्योंकि संक्षिप्त आत्म भी होते भगवान की जो भक्तियां संक्षिप्त हो गई थी, न स्वर्ग सिखा दिए साधारण ब्राह्मण बालक के रूप में हो गए। तो यही जल और पूजा की सामग्रियां, स्वर्ग मालाएं, दिव्य सुगंध चंदन अग्रिम रंग भगवान के ललाट में लेटने के लिए शरीर में लेटने के लिए चंदन प्रस्तुत किए। धूप है, दीप है और फिर धूप ऐसा धूप जिसमें बहुत सुगंध है। तो आज भी हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं और दीप, उसके बाद दीप, सभी वस्तुएं सुगंधित सुगंधित लावा लावा गंध अमले पहनते हैं और कुछ फल कुछ अंकुर पूजा की सामग्री लेकर पूजा करने लगे और जय जयकार होने लगा, स्तुति करने लगे जयकार गोविंद आदि पुरुषम पमहम भजाम की स्तुति ब्रह्मा जी गाए। सब लोग गा रहे थे और जय जय बोल जयकार हो रहा है। स्कॉनर जय शब्द पर बीज महान और भगवान की स्थिति कैसे शब्दों में कर रहे थे, जिन शब्दों में भगवान के अद्भुत महिमा अंत भगवान की महिमा ब्रह्मा जी की स्थिति में है और जो स्थितियों देवों में है, ये सब भगवान की महिमा को अंकित करने वाले शब्दों के द्वारा वह स्तुति कर रहे हैं। नृत्य बाधित तो गीत आ गए, नाच होने लगा, देवता लोग नाचने लगे, गीत बहुत अच्छी गीत गाने वाले प्रोफेशनल गायक गंधर्व आदि सब गाने लगे, शंख बजने लगा, बंदूकियां बजने लगी, बहुत आवाज हुई। ये बहुत बड़ा उत्सव होने लगा और जामवान जी जो भगवान राम के सेना में एक वरिष्ठ सैनिक थे, वे उस समय भगवान के महोत्सव में उसमें जवान थे, वामन देव के उत्सव में जवान थे। तो भगवान के उस विजय को देख करके कि सारे जगत को भगवान ने नाथ दिया, तो ये सब देवता नाथ गा रहे थे, ये दौड़ करके कोई करना लगा नहीं भगवान उस समय जब त्रिविक्रम बने थे, भगवान जी दौड़ करके त्रिकर्णा लगाया, सात बार इतने बड़े ब्रह्मांड के भगवान की परिक्रमा की। सुनाई बजा रहे तो लिखते हैं ड्रम बजा रहे थे, ढोलक लेकर के बजा रहे थे और भगवान के विजय की घोषणा कर रहे थे। भगवान विश्व को ले लिए हैं इसकी घोषणा कर रहे हैं। महोत्सव हो रहा था, बहुत बड़ा उत्सव, तो उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जय जय बोल रहे थे, तो जमान जी परिक्रमा कर रहे हैं। शब्द ज्यादा करके भगवान के विजय की घोषणा करते, ढोलक बजाने पर लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, क्यों ढोलक बजाए हैं। तो भगवान जी इसी को ढोलक बजाते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब जब भगवान वामन देव के रूप में हो गए, आसन पर बैठ गए, पूजा हो रही थी, तब दैत्यों ने ध्यान दिया। वही सर्वज हस्ता में विश्वा श्री पद व्यायाम से उचित सौभाग्य रश्म दीक्ष तत्या करना। जब असलों ने देखा कि हमारे स्वामी की सारी संपत्ति बड़ा व्यायाम से ये तीन पंथ का बहाना करके और छीन ली गई, इस ब्राह्मण ने छीन, इस समय हमारे स्वामी दीक्षित हैं, जग में दीक्षित, और वे ब्राह्मण को कुछ बोल नहीं सकते, पूजा कर रहे हैं, ये देख करके सह नहीं सकते। उन लोगों ने सोचा कि यार हम लोगों को वेतन कौन मिलेगा, जो राजा पंजाब सब भर दिया गया, देख करके सहन नहीं कर सकते और खड़े हुए से कहने लगे नवा आयन ब्रह्म ब्रह्म जी। अरे ये ब्राह्मण नहीं है, नरस नरस निवास है, ब्राह्मण ना है। नवा आयन ब्रह्म ब्रह्म, अरे ये विष्णु है, महामायावी है, बहुत माया जानता है, विष्णु है हमारा प्रसिद्ध शत्रु, दैत्यों के भगवान शत्रु हैं, असुरारी हैं, मारते रहते हैं, सारे ये विष्णु है। जब विष्णु विराट रूप में थे तो सभी कांप रहे थे, घबराए थे, और जब बालक रूप में हो गए हैं, वामन देव रूप में, तब कहें कि अब इसको मारो। नवा आयम ब्रह्म बंधु, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, माया विनाम द्वारा सभी कपटियों में श्रेष्ठ, माया जानने वालों में श्रेष्ठ। असली अर्थ है कि ये योग माया जानता है, द्विज रूप प्रतिक्षण, ये ब्राह्मण के रूप में आया है छिप करके, देव कार्यों चिकित्सक है, ये देवताओं का काम बनाना चाहते हैं, छल से आया है, कपट से आया है, इसलिए हमें याद माने शत्रु और बटी रूप में, ये हमारा प्रसिद्ध शत्रु आया है बटी रूप में, विद्यार्थी बनकर के आया है, भिक्षुक बन करके आया, गति रूप में आया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हमारे स्वामी का सर्वस्व लिखा, सब कुछ लग दिया। यज्ञ में किसी की हत्या नहीं करने का, कठोर वचन नहीं बोलने का हमारे स्वामी ने व्रत लिया, तो दंड दे नहीं सकते हैं किसी को, तो ऐसे स्वामी का सब कुछ हट गया। पहले छोटा छोटा पैर दिखा करके कपटी, और उसके बाल इतना बड़ा बन गया, सब नाप दिया, सारा मन ले दिया, सत्य पत्र से सत्य हमारे स्वामी बड़ी महाराज सत्यवादी सदा सत्य बोलते हैं, दीक्षित से विशिष्ट है। अभी समय की जग की दीक्षा दिया है, इसलिए और विशेष धर्म पालन कर रहे हैं। ये असत्य बोल नहीं सकते किसी ब्राह्मण से, ये दयालु है। लेकिन दयालु स्वामी का और जग में दीक्षित होने का मजाज फायदा उठा रहे हैं। तस्मात् अस्य भगवो धर्म, इसलिए इसका वध कर देना धर्म है। कितना आपको काम सोचना है, जो बड़ी महाराज जिसकी पूजा कर रहा है, सारा ग्रोत अर्पित अर्पित कर दिए, उन्हीं भगवान के लोग कहते हैं इसका वध कर देना हमारा धर्म। तस्मात् अस्य भगवो धर्म, मृत्यु सूचना प्रश्न, इस कारण से अस्त्र बढ़ इसका बोध कर देना हमारा धर्म। और यही हमारे स्वामी की सेवा है। उन्होंने बहुत खाया है, इनका वतन लिया है, नमक खाया है, तो इनके प्रति हमारी यही सेवा होगी कि इस ब्राह्मण का बोध कर दिया, मारने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतने आयु धानी गारे दाम चला, ये सभी आयु धारण कर लिए, अपना जो भी आयु था जग हो रहा था, लेकिन फिर भी अशुभ अपने अपने अस्त्र शस्त्र को ले लिए। और जग में जिसकी पूजा हो रही है उस जग पुरुष को मारने के, हाथ में भाला गणासा सब ले, शुभ प्रैक्टिस कर, शुभ कहते हैं भाला को त्रिशूल और प्रैक्टिस गणासा, ये चौरा होता है गला काटने के लिए। तो भाला गणासा सब ले लिए मारने के लिए। भगवान सब समय सभी औषधों से युक्त रहते हैं, उनके पार्षद उनकी सेवा करते हैं। भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के पार्षद कभी प्रकट रहते हैं, कभी गुप्त रहते हैं, सब थे भगवान के साथ में। तो ये सब अपने अपने अस्त्रों को लेकर के तैयार हैं। इतने आयु धन जग बड़े मनुष्य बड़ी महाराज की सेना में जो थे असुर के सर्वे बामनम होने के लिए शूल प्रतिष्ठा वे हाथ में दे लिए भाला शूल और प्रतिष भलिया ले लिए। वो तुरंत नामी चले मारोस के बैठा है, भगवान से सहज बय है। अश्लो हमारे स्वामी कितना सीधे साधे हैं, कितना अच्छा से बात किया, अभी उसको पत्नी बाप बना करके सारा ध्यान ले दिया। अनिच्छितों बले राज, बड़ी महाराज नहीं चाहते थे कि बामन देव से झगड़ा करें मारना, लेकिन बिना पूछे ही अपने को अनुगामी मान करके स्वामी की सेवा करनी चाहिए। कल मैं बताया था यही अशुभ का विषय है। कुछ विचार नहीं था, सर्वे बामनम होने के लिए हे सर्वे सभी असी एक मत होकर के बामन देव को मारने चाहिए। सिंह प्रतिष्ठा नाथ ने ले लिए सिंह बलि महाराज नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का झगड़ा करे, लेकिन वे जब दीक्षित है अभी सोच ही रहे थे जिनको मना करे पर आ गए मारने के लिए। ये महाराज परीक्षित अपने सेनापतियों को ऐसा मिलने वाला देखकर बड़े महाराज उन्हें रोके, ए रुको ऐसा नहीं था। बड़े प्रेम से समझाया, बड़ा उनके शरण में बेहद समस्या थी, भगवान के बारे में यदि बोलते तो उसको तो समझ में आएंगे, इसीलिए किसी तरह से देखना। पर वे मारने के लिए तैयार थे, मारने के लिए चले तो उसी समय भगवान के सत्कार से प्रकट हो गए और हंस करके असलियों को उन्हें देखा, अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सबके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, सभी पार्षद तलवार भी आते हैं, गजा भी आते हैं, अस्त्रों को आते हुए भगवान के पास रोका, निको और लाठी चार्ज कर दी, लगे पीटने बहुत जोर से और हाय हाय करते हुए पीछे ये क्या भगवान के पास शुरू में बहुत बल होता है, भगवान के साथ मैं तो लाठी चार्ज कर रहा हूं लेकिन वास्तव में लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। कौन कौन थे? नंद सुनंद जय विजय श्रवण पाल कुमुद कुमुदास विश्वक सेन और वरुण जी, ये सभी पार्षद भी थे। जयंता सुखदेवा पुष्प जयंतों के साथ जयंत सुखदेव पुष्पदंत और सातव भगवान के सभी पार्षद सर्वे नारायणत प्राण सभी ने 10,000 हाथियों का बल ये रहता नहीं है, बहुत बलशाली थी। चुनौ के जग निराश में उन्होंने आसुरी सेना का नाश कर दिया, भगा दिया। भगवान के पास लोग जब उन्हें देखा तैयार से भाग हमने माना सुनाए शोकाम दृष्टि अपने सेना को हराश देख करके बलि महाराज जो बड़े बड़े सेनापति थे वो डरते हुए थे तो उनके नाम ले लेकर के बलि महाराज कहने लगे। उस समय बलि महाराज को याद हो गया कि हमारे गुरु ने साफ दिया है साफ के कारण पराजय हो रही तो कहते हैं हे दुख चित्त हे राहु, राहु को राहु कहने में सुंदर हूँ, हे दुख चित्त, दुख चित्त है ब्राह्मण जिसके चित्त में हो, जो ब्राह्मण को खाता रहता वो दुख चित्त है। राहु हे नेम नेम सुयतान बोलता हमारी बात को सुनो सुनो, माँ युद्ध देता विरोध करना, युद्ध मत करो, युद्ध से गिरत मिला युद्ध रोको, यह काल हमारे अनुकूल नहीं है, केवल काल की बात करो, ये नहीं कह रहे कि भगवान है, असुरों को शिक्षा दी नहीं जा सकती। बड़े महाराज ने कह रहे कि भगवान है, उनकी पूजा करो, सब प्रणाम करो, तो उनके जैसा ही बोल रहे हैं कि यह काल नाचक कालो अयम अर्थ के, यह काल समय हमारे अनुकूल नहीं है, हम लोगों का अर्थ साधने वाला नहीं है, यह प्रभु सर्वभूता है, सुख दुखों को पक्त है, सुख दुख देने वाला वास्तव में काम है, ऐसे काम को तुम अपने पौरुष से काम नहीं पाओगे। अपने उद्यम से प्रयास से काल की गति को रोक नहीं पाओगे। जो काल भगवान पहले हम लोगों के अनुकूल थे और देवताओं के प्रतिकूल, वही काल भगवान और देवताओं के अनुकूल हुए, दैत्य ने कहा कि फिर भी प्रयास तो करना चाहिए, बने महाराज संभाव बहुत सुंदर नीति है, बले न सचिवय बुद्ध है दुर्मंत्र दुर्गा मंत्र स्वभाव भी सामान्य वीर पाय कारण संबंध काल का अतिक्रमण किसी भी उपाय से नहीं हो सकता, बले न बहुत बड़ा भौतिक बल हो या सेना हो, इससे काल को नियंत्रण नहीं करेगा। सचिव बहुत से मंत्री हो और एक से बुद्धि देने वाले मंत्री, लेकिन मंत्रियों के बल से काल को हराया नहीं जा सकता। बुद्धिया या बहुत पढ़ाई लिखाई से बुद्धि से काल के चाल को रोका नहीं जा सकता, फोर्ट बनाकर किला बनाकर के किले में लगने रहे सुरक्षित रहना चाहिए, बच नहीं सकता। मंत्र और किसी भी मंत्र से काल को रोका नहीं जा सकता, जैसे कोई मंत्र होता है सांप को बस में कर लेता है, रोता भी मंत्र के बस में होती, लेकिन काल मंत्र के वश में नहीं। किसी दवाई के वश में नहीं होता है, काल जो करना चाहता है वो नहीं देता, किसी दवा से काल को पलन नहीं हो सकता। ये देखा गया है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बने रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं, काल नहीं चाहता है, नहीं भरते, जो भगवान भगवान करना चाहते हैं वही होता है। काल से कोई बलवान नहीं, काल सभी का स्वामी है। किसी को दुख देना और सुख देना काल के लिए, समय पर सुख मिलता है, समय पर दुख। यही काल जो सुख का जन्म देता है, यही मार देता है। तो काल की चाल का अतिक्रमण करना यह संभव है, और वही काल यही सामने उपस्थित। ऐसे भगवान को दिखा के नहीं करते, वही काल हमारे विपरीत हो गया। वही काल में तो यही काला कृष्ण और विपरीत हो गया। नीति द्वारा अश्व को समझा रहे हैं, और यह कह कह दे कि यही हमारे सुदेव हैं, इनको सब प्रणाम करे पूजा करे, तो वो समझेंगे नहीं। ये समझेंगे बड़ी पागल हो गए। इसीलिए भगवान की महिमा नहीं बता रहे, काल की महिमा बता रहे। काल भगवान की इच्छा है। देखो ऐसा समय आ रहा है, यही देवता है जिनको हम लोगों ने बहुत बार जीता है, क्योंकि काल हमारे अनुकूल था, और यही देवता इस समय ऐसे गरज रहे हैं जैसे शेर गरजता है, सिंह बने हुए और मार बने, क्योंकि काल उनके अनुकूल हो गए, हमारे अस्तित्व है। तो इसलिए युद्ध मत करो, जब समय अनुकूल होगा तब हम भी जीत जाएंगे, तो प्रतीक्षा करो। सबसे बड़ा दैव जो दैव मतलब इससे देव की इच्छा, हमारे भाग्य में भाग्या लिखा है, तो भाग्य लौटेगा तो फिर हम जीत जाएंगे। चेतन मन जो समय गरीब दैवम पशु पति, जब हमारा भाग्य लौटेगा अनुकूल होगा तो हम उनको जीत लेंगे। तस्मत कालम प्रतीक्षा फल पति, इसीलिए समय की प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा तो भाग्य लौटेगा तब हम जीतेंगे। यही बड़ी महाराज भाग्य की बात,
भक्तों से विनती है कृपया बैठिए, महाराज जी कथा हम लोग का पान करा रहे हैं, हम सब खड़े हो रहे हैं, कृपया सभी से विनती है।
तो केवल भाग्य अभाग्य की बात का कर तो समझा रहे हैं कि युद्ध न करो, अभी समय ठीक नहीं है। जो ठीक समय आएगा हमारा भाग्य लौटेगा तब हम जीत जाएंगे। बलि महाराज परम भक्त है, लेकिन भक्त होने के बाद भी सभी को खास करके असुरों को समझाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। इसीलिए प्रारब्ध की बात कहकर भाग की बात कहकर समझाया। बलि महाराज की बात सुन करके सभी व्यक्त वहां से भाग गए, सीधे भागे, स्वर्ग छोड़ करके भागे। बस भागे भागे एक भागे पकाओ एक करे, स्वर्ग खाली है। जो स्वर्ग में जमे हुए थे उस स्वर्ग को छोड़ करके भाग, भगवान के पार्षदों की मार खाते विष्णु पार्षद पा देता तो श्री भगवान की इच्छा ज्ञान करके गुरु जी भगवान ने इशारा किया होगा और जैसे उनकी इच्छा को ज्ञान करके गुरु जी बड़ी महिला को बांध दें निश्चित तरह हाथ पीछे करके बांध दें। भगवान ने आदेश दिया कि इसको अरेस्ट करो बंदी को बांध दें अथवा कार्य सिको व्यापार विराट प्रभु चुके निबंध बालन का गरुण सबको हम यज्ञ में जब सूर्य सीने का समय आया उसी समय बलि महाराज को बांध दिया गरुण जी ने बांध गरुण पास गरुण पास गरुण देवता का पास बहुत मजबूत है उसी पास से बड़ी को बांध दिया जब बलि को बांधा गया उस समय हाहाकारों में हमें सब जगह हाहाकार होने लगा स्वर्ग में पताल में सब जगह हाहाकार तब इतने बड़े महान पुरुष को भक्त को भगवान ने बांध दिया बंदी बनाया वे बलि महाराज के दुर्दशा के विषय में महाराज परीक्षित ने खुद प्रश्न किया जो व्यक्ति दान दे दिया पूरे मनों को फिर भी उससे बांधा गया भगवान ने ऐसा क्यों किया भगवान क्यों बांधे तो यह दंड नहीं है यह पुरस्कार से भी बढ़ता है भगवान परम शक्तिशाली है वे बांध रहे हैं इसके साथ भगवान परम करुण जी हैं दयालु उस समय बलि महाराज बांध करके गिरा दिए तब श्री भगवान ऊपर से डांटने लगे पदानी तुम्हें दत्ता ने हमें मोहन करा के अरे अशोक तुमने तीन पल भूमि हमें दान में दिया तो तुम तो देखे तुम्हारे सामने ही ब्राह्मण कर्म का मुहिम सरकार दो पद में ही हमने सारा जगत नाप लिया तृतीयों में टिकाऊ करें तीसरे पद के लिए क्या स्थान है दो ये क्या हुआ
माता जी से मंजूर है क्योंकि आप दोनों बैठ करिए महाराज जी का पास
प्रकृति जहां तक सूर्य कपाते हैं जहां तक सूर्य यहां प्रकाश जाते हैं जहां तक चंद्रमा तारा मंडल के साथ प्रकाश देते हैं जहां तक मेघ वर्षा करते हैं वहां तक सब तुम्हारी भूमि थी सबको मानो ना किया अगर क्यों नया कर एक पर समय में भूलो का भूलो करना पड़ेगा खून चल के साथ और हमारे शरीर से सारी दिशाएं भर गए हमारा विशाल शरीर सौ संख्या छह है और दूसरे पर नारद देखते देखते मैंने स्वर्ग लोक को नाप लिया, ब्रह्म लोक को नाप लिया। प्रतिज्ञा करके वचन दे करके तुम दान नहीं दे पाओ, नहीं दिए तो निश्चित है कि मिले वास इससे तुम नरक में गिरे हो, तुम नरक में गिरे हो। गुरु ने तुमको कहानी है नरक में गिरे, मिथ्या तुम्हारा मनोरथ है स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग प्राप्त करने का तुम्हारा मनोरथ मिथ्या। तुमने वचन दे करके मुझे दान नहीं दिया है क्योंकि हमको ठगा है, जो तुम नरक में गिरे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्री भगवान ठगे नहीं गए थे और बड़ी महाराज ठगे भी नहीं, लेकिन कह रहे हैं तुम नरक में गिरोगे। भगवान की कहने का आशय है नरक के पास ही शीतल लोक है, नीचे शीतल लोक नीचे है, नरक नीचे है, तुम नरक में जाओगे मैं तो शीतल लोक जाओगे। बड़ी महाराज इस प्रकार से भगवान की बातें सुनकर अपनी कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, आपने मेरा ले लिया पर मुझको नहीं दिया, तो तृतीय पैर को आप हमारी शेर कर रखते भगवान अपने भक्त को कहते बड़े खुश हैं, लेकिन ऊपर से तर्क भक्त कर रहे हैं तुमने दान नहीं दिया। कहाँ है तीसरे तर्क कहाँ रखे कहाँ रखे बड़ी महिलाओं ने कर दिया हमारे शीर को रखें। ये प्रसंग कल कहा गया, कल वैसिया है पूरा किया गया और परसों तेसिया है भगवान की कथा पूरी है। जय श्री कृष्ण।